ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भागवत कक्षा में, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हिज ग्रेस नरसिंह कवच प्रभु। प्रभु जी इस्कॉन के डीटी वर्शिप मिनिस्टर हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स प्रॉपर मेंटेन हो श्रीला प्रभुपाद जी की आज्ञाओं के अनुसार। और मायापुर अकेडमी में प्रभु जी बहुत विशेष रोल प्ले करते हैं डीटी वर्शिप कोर्स को पढ़ाने के लिए। और प्रभु जी की ही बाय हिज मर्सी वी हैव बीन एबल टू ट्राइंग टू इम्प्रूव अवर डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। प्रभु जी जब भी आते हैं यहाँ पे हमें बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, और साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी हिज ग्रेस नरसिंह कवच प्रभु एक बहुत ही आई ऑलवेज फाइंड हिम वेरी 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 डियर डिवोटी, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हम्बल, और बहुत अच्छे ढंग से हम सबको गाइड करते हैं। सो वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव हिज ग्रेस नरसिंह कवच प्रभु विद अस। तो आइए हम इनका स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृपया अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर करते हैं। हरे कृष्णा।
श्री सुक उवाच।
श्री सुक उवाच।
कंस
कंस
एवं प्रसन्नाभ्यं कंस एवं प्रसन्नाभ्यं। Oh, okay. I can't read that. Okay. All right, so I'll read this first, and then we'll go on to the... I'll do that first, yeah. Tasyang ratriyang vyatitayang tangsyang ratriyang vyatitayang tasyang ratriyang vyatitayang Kangsa ahuya mantrina Kangsa ahuya mantrina Kangsa ahuya mantrina Tasyang ratriyam vyatitayam Kangsang ahuya mantrina Tebya Achasta tat sarvang tebya achasta tat sarvang
tebya achasta tat sarvam
tebya achasta tat sarvam
tebya achasta tat sarvam
yad uktam yoga nidraya yad uktam yoga nidraya Yaduktang yoga nidraya Tebya achasta tat sarvam Yaduktang yoga nidraya Tasyang ratriyang vyatitayang Kangsa ahuya mantrina Tebya achasta tat sarvam Yaduktam yoga nidraya Tasyang ratriyang vyatitayang Kangsa ahuya mantrina Tebya achasta tat sarvam Yaduktam yoga nidraya
शब्दात तस्याम उस रात्रायाम रात को व्यतीतायाम बिताकर कंस ने आहुया बुलाकर मंत्रिणा सारे मंत्रियों को तेभ्या उन्हें आचष्ट सूचित किया तात वह सर्वम सब यदुक्तम, जो कहा गया था कि कंस का वध करने वाला अन्यत्र कहीं है। योगने द्रया, योग माया देवी दुर्गा द्वारा।
ओके, सो आई रीड द प्रीवियस वर्स एंड देन दिस वन एंड देन रिपोर्ट। Shishu Kruvacha Kangsa Eva Prasana Byam Vishuram Pratibhashita Devaki Vasudeva Byam Anugyato Vishad Griham. Shukadeva Goswami continued, thus having been addressed in purity by Devaki and Vasudev, who were very much appeased, Kangsa felt pleased, and with their permission he entered his home. So you want to read that translation?
Shukadeva Goswami ne kaha, Shanta शांत मना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह अपने घर चले गए।
After that night passed, Kangsa summoned his ministers and informed them all of that had been spoken by Yogamaya, who had revealed that he who was to slay Kangsa had already been born elsewhere.
रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था, जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है।
So just a little comment on these two verses here. We see in particular in this first verse how Shukadeva Goswami is referring to Devaki and Vasudev as Vishuddham.
तो प्रभु जी शुरुआत से पहले जो छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, और जैसे हम इस पिछले श्लोक में देख सकते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने देवकी और वसुदेव दोनों का जिक्र किया है और उनको विशुद्ध सत्व में बतलाया है।
दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बिकॉज व्हाइल वी सी दैट यू नो कंस हैज बीन एस्पाउसिंग ऑल दिस यू नो वेरी वेरी हाई हाई फिलॉसफी,
तो हालांकि कंस जो है वो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं,
but no one has referred to him as Vishuddham.
पर उसके इस तरह के दर्शन प्रस्तुत करने के बावजूद शुकदेव गोस्वामी ने उसे विशुद्धम नहीं कहा।
You know, he's been talking about the temporary nature of material life and how everyone suffers due to their past misdeeds.
तो जैसे यहाँ पर जो है वो जीवन की क्षण भंगुरता के विषय में बात कर रहे हैं कंस, और ऐसे बता रहे हैं कि जीव किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं।
And that even though he's performed the most abominable act, that Vasudev and Devaki should not be upset with him because actually it's their karma.
और वो उनको नसीहत दे रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है वसुदेव और देवकी को, तो तुम्हें जो है इस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए क्योंकि दरअसल ये तुम्हारा कर्म ही है जो तुम भोग रहे हो।
Basically what he's saying is don't blame me.
तो वो ये कहना ये चाह रहा है कि देखो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
It's all the will of the supreme.
तो ये अगर किसी की जिम्मेदारी है तो भगवान की जिम्मेदारी है सारी।
Bit of a cop out.
तो ये मतलब दरअसल चतुराई है और
but as we'll see as the story unfolds is you know even though he's presenting this very high Vedic philosophy he doesn't believe it.
तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि यद्यपि वो इतनी बड़े बड़े वैदिक दर्शन प्रस्तुत कर रहा है मगर वो खुद जो है इस पे कोई विश्वास नहीं करता।
Yet we see that Vasudev and Devaki, because of their transcendental situation, they've just accepted that this is the arrangement of Krishna and they're tolerating it.
मगर यहाँ पर वसुदेव और देवकी को देखें, क्योंकि वो विशुद्ध सत्व में होने के कारण वो जो है भगवान के ऊपर उनकी निर्भरता है और उन्होंने इसीलिए इसको इस तरीके से कबूल कर लिया है कि ठीक है ये जो भी है भगवान की मर्जी है और वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं।
Now in the previous purport, Srila Prabhupada quotes a verse which he quotes quite often from the 10th canto, 14th chapter. This tatten dukham pam su samikshamano bunjane vatmakrapam vipakam hridvag vapuvi vidadam namaste jivete yo muktipate saroya bak. That he's saying that this is the nature of the body is they just tolerate miseries.
तो पिछले अध्याय में जो है श्रील प्रभुपाद दशम स्कंद के चौदहवें अध्याय का आठवां श्लोक जो है उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि ये भक्त जो है वो इस तरीके से आने वाली विपदाओं को जो है वो बर्दाश्त करते हैं।
And one of my favorite places where Srila Prabhupada quotes this verse is in the 13th chapter of the Gita.
तो यहाँ पर 13वें अध्याय में भी श्रील प्रभुपाद उसी श्लोक को जो उद्धृत करते हैं भगवद गीता में.
He's saying that the nature of the devotee is they realize that yes, I am suffering now due to my own past misdeeds.
तो भक्तों का स्वभाव है कि वो इस तरीके से इस चीज को लेते हैं कि मैं जो भी ये भुगत रहा हूँ ये मैं अपने पूर्व कुकर्मों के वजह से भुगत रहा हूँ.
And actually, I should be suffering so much more than this.
और दरअसल मुझे इससे कहीं ज़्यादा मेरे ऊपर जो विपदा आनी चाहिए.
But Krishna, out of his kindness upon me, he's reduced this suffering just to a small token.
तो मगर ये भगवान की असीम कृपा है जिससे जो उन्होंने मेरी ये जो कष्ट है उसको बहुत ही थोड़ा सा जो है कर दिया.
So Srila Prabhupada saying that like the devotee accepts that actually I should be suffering so much more, but just to remind me of my past impious activities, Krishna is giving me a little token.
तो दरअसल मुझे बहुत ज्यादा ये भुगतना था इसका जो फल है मगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो उन्होंने मेरा ये कर्म जो उसको बहुत घटा दिया है पर सिर्फ मुझे याद दिलाने के लिए मैंने क्या किया था इसलिए थोड़ा सा जो है भुगतान मुझे करना पड़ रहा है.
But because the devotee has surrendered to Krishna, he becomes very dear to Krishna, so Krishna doesn't like to see him suffer. Because the devotee is dear to Krishna, because we surrender, Krishna doesn't like to see him suffer.
तो क्योंकि भगवान के जो है भक्त बहुत प्रिय होते हैं इसीलिए भगवान को यह बर्दाश्त नहीं होता कि उनके उसके भक्त जो है वो कष्ट भोगे.
But nonetheless, because we have performed past sinful activities, then Krishna, he gives us just a token to remind us, so we don't become proud, we don't become puffed up.
तो मगर फिर भी भगवान जो है ताकि हमारा घमंड जो है अहंकार बढ़ ना जाए इसीलिए थोड़ा सा हमें भुगतान जो है वो करना पड़ता है भगवान इसलिए वो कष्ट को बहुत घटा देते हैं पर थोड़ा सा हमें जरूर देते हैं.
Because for a sadhaka, the most dangerous thing is pride.
क्योंकि एक साधक के लिए सबसे खतरनाक चीज जो है वो घमंड है.
If we look, you know, through the scriptures, we see there's so many, especially Bhagavatam, there's so many nice stories about how devotees became proud, they became attached, they became thinking they were the control and enjoyer, and they fell from their position of devotional service.
तो क्योंकि भागवतों में ऐसे कई उदाहरण आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि भक्तों के अंदर जो है अहंकार आया और उनके अंदर आसक्ति बढ़ी और उन्होंने जो है नियंता बनने की कोशिश करी और अपने भक्ति के पद से जो है नीचे गिर गए.
So these things that happen to us in the material life, in the material world, we should just let them be a warning. That this is actually not my place.
तो जब ये ऐसी चीजें हो हमारे साथ तो हर भक्त को इस तरह सोचना चाहिए कि ये जो है भगवान की तरफ से चेतावनी है और ये याद दिलाया जा रहा है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है.
As Krishna explains in the Gita, he explains this material world. He says, "Dukkhalayam ashashvatam." It's temporary, and therefore it's full of misery.
और जैसे भगवान भागवत गीता में जो है हमें बताते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम क्योंकि ये दुखों का घर है इसलिए अशाश्वत भी है.
And just like we see here, Kamsa, he's trying to be the controller, he's trying to be the enjoyer, thinking that he can actually manipulate the material energy.
तो क्योंकि वो नियंता बनने की कोशिश कर रहा है वो सब चीजों को जो है अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है वो कंस तो इसीलिए वो इस तरीके से उसका बर्ताव है.
And he may be able to manipulate it to some extent, but not completely.
तो कुछ हद तक जो है वो चीजों को जो है फेरबदल करने में कामयाब भी हो जाता है मगर फिर भी संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाता.
As we'll see in Prabhupada's purport, he explains, this is actually the trick of Maya, to delude the living entity into thinking that I am the controller, I am the enjoyer.
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रार्थना में आगे बताते हैं कि यही जो है माया की चाल होती है कि वो जीव को जो है विश्वास दिलाते हैं उसको इस भ्रम में डालते हैं कि हाँ हाँ तुम जो है नियंता बन सकते हो तुम हर चीज को जो है काबू कर सकते हो.
If the jiva wants to have this illusion of being the controller and the enjoying this material world, then the material energy will make that facility, make that available for them.
तो अगर जीव जो है उसकी ये इच्छा हो कि वो इस भौतिक जगत में जो है नियंता बनना चाहता है और चीज का भोक्ता बनना चाहता है तो जो माया है माया शक्ति है उसको ये मौका देती है.
But a devotee understands this is not actually my position. I am just a servant.
पर भक्त जब ये समझता है कि ये मेरा जो है काम नहीं है मेरी जो स्थिति है वो एक सेवक की है.
कृष्ण इज द कंट्रोलर, कृष्ण इज द एंजॉयर.
कृष्ण जो है वो भोक्ता है और वो नियंता है.
एंड ही इज द एक्चुअली द ओनली पर्सन हु कैन क्लेम दैट.
और वो वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जो ये दावा भी कर सकते हैं.
सो मेनी नाइस वर्सेस इन द भगवद गीता दैट सपोर्ट दिस अंडरस्टैंडिंग.
तो भगवद गीता कितने ऐसे श्लोक है जो इस समझ को पुष्ट करते हैं.
Just like if we look in the 10th chapter of the Gita, it says, Aham savasya prava omata savam pravatate iti mat bhavajante mam buddha bhavas manvara. That I am the source of all material and spiritual worlds. Everything is savasya. Everything emanates from me.
तो जैसे भागवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं इस भौतिक जगत का नियंता हूं और हर चीज इस दुनिया में जो है मुझसे निकलती है.
There's nothing in existence that doesn't come from Krishna.
तो ऐसी कोई भी चीज पूरे भौतिक जगत में सृष्टि में नहीं है जो भगवान से नहीं आती.
So understanding this, don't you think that Krishna's got the right to say he's the controller and the enjoyer?
तो क्या इसके चलते भगवान के पास ये हक नहीं है कि वो ये कहें कि मैं नियंता भी हूँ और मैं भोक्ता भी हूँ?
Who else can say that?
और कौन कह सकता है ये?
Who can say that everything comes from me?
और कौन ये दावा कर सकता है कि हर ये सृष्टि की हर चीज जो है मुझसे निकलती है?
But this is the position of the living entity, material nature. He's thinking that I am the controller. Everything I see, this is mine. This is my kingdom. All I survey.
तो पर ये भौतिक बद्ध जीव की जो है यही जो है विडंबना है. वो यही सोचता है कि मैं नियंता हूँ और ये जो सारी चीजें मेरी नजरों के सामने है सबका मैं मालिक हूँ.
And therefore, it's my right to control.
तो इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं इन पे जो है प्रभुत्व जमाऊं.
But as Krishna says in the verse in the 10th chapter, he says, but actually the wise who understand perfectly my position, they worship me with all their hearts.
तो पर भगवान भागवत गीता में कहते हैं कि जो ये मेरी स्थिति को समझता है वो सर्व मेरे मेरे पूरे हृदय से जो है मुझे पूछता है.
So even though we see that kings are here, he's quoting, oh, but actually this is all going on by the arrangement of the Supreme.
तो यहाँ पर जैसे कंस जो है वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये भगवान की मर्जी से ही हो रहा है.
But he doesn't actually accept that.
मगर वो खुद जो है इसको मानने से इनकार करता है.
Because if he did, what would be the conclusion?
क्योंकि अगर वो ये मान लेता जो वो कह रहा है तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता?
He'd worship Krishna with all his heart.
तो वो खुद जो है भगवान को अपने पूरे मन से जो है पूज रहा होता.
So basically he is just presenting some nice words to pacify Devaki and Vasudev because he's done some pretty horrendous activities.
पर तो दरअसल कंस क्या कर रहा है वो चिकनी चुपड़ी बातों से जो है वो देवकी और वासुदेव को जो सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है कि उसको मालूम है कि उसने बहुत ही घटिया और घिनौनी हरकतें की है.
Every time a child was born, he would come into the delivery room, he picked the child up and smash its head against the floor.
तो जब भी जो है कोई जो है बच्चा पैदा होता था देवकी का तो वो आता था वहां पर और वो बच्चा उठाता था और उसको फर्श पे जो है पटक के मार डालता था.
It's not the activity of a saintly person.
तो ये किस तरह की हरकत है?
It's the activity of a demon.
तो ये कोई साधु की नहीं है किसी असुर की जो है ये कार्य का कार्य है.
But not just the demon, but the person who's got the lowest of qualities.
और सिर्फ आसुरिक नहीं, जिसके सबसे निम्न कोटि के जिसके अंदर गुणों अवगुणों.
Even we see about 4 verses previous, he says, "I've behaved just like a rakshasa."
4 श्लोक पहले भी आप देखिए तो वहाँ पे वो खुद कह रहा है कि मैं बिल्कुल एक राक्षस की तरह मेरा व्यवहार है.
And then he says, "Oh, actually, you know, it's so sinful I've done. Please forgive me." But yet we see, we'll read tomorrow's verse. And he's going to start doing it all over again.
तो उसके बाद वो जो है माफी भी मांग रहा है कि मैंने बहुत ही घिनौनी हरकत की है, मुझे माफ कर दो. पर कल का जो श्लोक है अब आने वाला उसमें आप देखेंगे दोबारा वही वापस वो आ जाएगा डाक के 3 पद.
So what conclusion can we draw from that?
तो उससे क्या हम निष्कर्ष निकालें?
Any thoughts?
क्या आपका क्या विचार है? प्रभु जी पूछ रहे हैं.
No? What conclusion? Kunks is quoting all this high philosophy.
तो ये कंस जो इतनी बड़े-बड़े उच्च सारे दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं.
So obviously he studied the scriptures.
इसका मतलब क्या है? इससे एक चीज तो पता चलती है कि शास्त्र पढ़े हुए हैं.
Obviously he knows what's contained in the scriptures.
तो उसको ये भी मालूम है शास्त्रों में है क्या?
But he doesn't act upon it.
पर वो उस पे जो है कार्य नहीं करता.
It's just simply ज्ञान.
इसका मतलब सिर्फ ज्ञान है.
There's no realization.
उसके अंदर कोई उसकी अनुभूति नहीं है शामिल.
Because if he actually had realization about what he was saying, how could he possibly do those things?
क्योंकि अगर जो वो कह रहा है, अगर उसके बारे में उसकी कोई अपनी अनुभूति होती, तो किस तरह वो ये काम कर सकता था?
Because the scriptures they very clearly explain to us that you know every action we do in this material world has a resultant reaction.
क्योंकि शास्त्र में जो है ये बात बहुत साफ है कि जो भी कार्य हम करते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा हमें भुगतना पड़ता है इस दुनिया में.
But he's not concerned about that. All he's concerned about, see, like in one of the previous purports, it explains about the immediate cause and the effective cause.
तो जैसे मगर उसका जो है वो जो बता रहा है या जो वो कर रहा है उससे उसको कोई सरोकार नहीं है. क्योंकि अगर वो होता, जैसे पीछे उन्होंने बात करी श्लोकों में कि 2 तरीके के कारण होते हैं. एक जो हम किसी चीज का कारण देखते हैं और उसका पीछे का एक और इफेक्टिव पॉज को क्या कहते हैं, आई डोंट नो, एनीवे जी बताएं, नॉट लाइक ट्रांसलेशन, या इफेक्टिव पॉज,
इफेक्टिव इट मींस व्हाट इज एक्चुअली द कॉज,
तो दरअसल जो उसके पीछे वजह है वो क्या है और जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, वो दो अलग अलग हो सकती
है. जस्ट लाइक आई गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल,
मैं एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं.
आई थिंक यू वर देयर इन मायापुर, राइट. I wanted to go to the bathroom, so I came down from the second floor of the Chaitanya Bhavan. Mm-hmm. I put my bag down on a chair there, and as I moved in closer to the chair, I stubbed my toe on this crossbeam at the bottom of the chair.
तो प्रभुजी अभी कुछ दिनों पहले मायापुर में जो है प्रभुजी बता रहे थे कि मैं बाथरूम जाना चाह रहा था, तो मैंने अपना बैग जो है एक कुर्सी पर रखा और कुर्सी के जो है वो लकड़ी निकली हुई थी, तो मैं मेरा जो है अंगूठा जो है वो उस पर लग गया, ठोक गया.
And actually lifted the toenail.
और मेरा जो है नाखून निकल गया इसका, पैर का, अंगूठे का.
It's quite painful.
तो बहुत ही दर्दनाक है.
And my immediate response is to think they don't know how to make chairs in this country.
और मेरा सबसे पहले जो है दिमाग में यही आया कि ये हिंदुस्तानियों को चेयर बनाने नहीं आता, कुर्सी बनानी नहीं आती.
Because you don't have chairs like that in Australia where there's a bit of wood across the bottom. You just don't have.
जो ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का जो है एक लकड़ी बाहर जैसी निकली हुई है, इस तरह के चेयर कुर्सियां वहां नहीं बनती है.
So that's the immediate cause. I'm thinking this is the cause.
तो क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ये वजह है मेरे मेरे चोट लगने की वजह जो है ये कुर्सी है.
The effective cause is actually the action that I did in the past which has caused this to happen.
मगर जो दरअसल जो वजह वो क्या है, वो पीछे की गई कोई हरकत है जिसका नतीजा मुझे अब भुगतना पड़ रहा है.
So someone who's materialistic or demoniac, they don't see beyond the immediate cause.
तो जो भौतिकवादी होते हैं या जो आसुरिक होते हैं, ये दो प्रवृत्ति के लोग जो हैं, वो जो बिल्कुल फौरन जो वजह आपकी है कष्ट का, उससे आगे नहीं देख पाते.
They don't understand this principle that Prabhupada's quoting in the previous purport about this tatte nukam pam susamikshmano. They don't understand that because of my past activities this is happening.
तो जैसे जो प्रभुपाद पिछले अध्याय में जो है दशम स्कंध का जो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, तो वो ये चीज नहीं देख पाते कि ये जो मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरे पिछले कर्मों का नतीजा है.
And even we see, even though Kamsa, he's quoting that these all your children have died because of their past activities, still he doesn't apply that to himself.
तो जब कंस जो है देवकी को ये नसीहत दे रहा है कि तुम्हारे जितने भी बच्चे मारे गए हैं उनके पूर्व कर्मों की वजह से मारे गए हैं, तो वो उसको उस सिद्धांत को अपने ऊपर जो है अपनाने से नाकारी है.
So it's just a philosophy of convenience for him.
तो इसलिए ये जो दर्शन है ये अपने सहूलियत के हिसाब से अपनाया जाने वाला दर्शन है.
I'll read Srila Prabhupada's purport. This is Prabhupada's purport, and then I'll talk a little more.
अब हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे.
The Vedic scripture Chandi describes Maya, the energy of the Supreme Lord, as Nidra, Durga Devi Savabhuteshu Nidrupena Sangstita. The energy of Yoga Maya and Maha Maya keeps the living entities sleeping in this material world in the great darkness of ignorance. You want to do that one?
You can go on.
Okay. Yoga Maya, the goddess Durga, kept Kamsa in darkness about Krishna's birth and misled him to believe that his enemy Krishna had been born elsewhere. Krishna was born the son of Devaki, but according to the Lord's original plan, as prophesied to Brahma, he went to Vrindavan to give pleasure to Mother Yashoda and Nanda Maharaj and other intimate friends and devotees for 11 years. Then he would return to kill Kamsa. Because Kamsa did not know this, he believed Yogamaya's statement that Krishna was born elsewhere, not of Devaki.
तात्पर्य चंडी नामक वैदिक शास्त्र में भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया है. दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता. योग माया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत में जगत के अज्ञान रूपी गहन अंधकार में सुलाए रखती है. योग माया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और यह कहकर उसे भ्रांत किया कि उसका शत्रु कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है. कृष्ण तो देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु भगवान की पूर्व योजना के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा को की थी, वे माता यशोदा तथा नंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्षों तक आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन गए. इसके बाद वे कंस का वध करने लौटे. क्योंकि कंस इसे नहीं जानता था इसीलिए उसने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, देवकी से उत्पन्न नहीं हुए।
So we see here some of the Prabhupada's describing or talking about the nature of the Lord's energy.
तो यहाँ पर जैसे भगवान के बहिरंगा प्रकृति के स्वभाव के बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बतला रहे हैं।
And how yoga maya and especially maha maya keeps the jiva sleeping in the darkness of ignorance.
तो योग माया और विशेषतः महामाया माया का काम है कि जीव को जो है निद्रा में सुला कर रखे।
And it's such an expert arrangement.
और वो इतने ये चीज इतने विचक्षणता से करती हैं।
Like you see, like if you go to prison house, if anyone's ever been to prison house, you'll see there's big high walls, there's barbed wire or razor wire, there's guard towers, machine guns, spotlights, everything like that.
तो जब आप किसी भी जो है जेल में जाएं, तो आप जेल में देखेंगे कि चारों तरफ जो है कटीली तारें होती हैं, लोग बंदूकें लेके खड़े हैं, बड़ी-बड़ी जो है लाइटें लगी होती हैं ताकि जो है कोई फरार ना हो सके।
They have to make such an arrangement to keep the prisoners inside, and still they escape.
तो वो इतना सब कुछ बंदोबस्त करने के बावजूद भी कभी-कभी जो है कैदी भाग जाता है।
Actually, when I was in Australia, before I left Australia, some prisoners escaped from a maximum security prison.
तो प्रभु जी बता रहे हैं मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ से निकलने से पहले खबर आई थी वहाँ पर कोई बहुत ही जो है कड़क कैद खाना था, पर फिर भी वहाँ से कैदी भागने में कामयाब हो गए।
But another name of Maya is Durga.
पर माया का जो है दूसरा नाम दुर्गा है।
And Durga means fort or prison house.
तो यानी दुर्ग का मतलब है कि बहुत बड़ा किला।
But she's made such a really amazing arrangement, no one escapes.
और उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि वहां से कोई नहीं भागता, कोई नहीं निकलता।
There was a song I listened to when I was a teenager, and one of the lines in the song was, "No one here gets out alive."
Yes. तो एक गाना भी है, उस गाने का जो है मतलब ये है, इस दुनिया से कोई जिंदा बाहर नहीं निकलता।
It's such an amazing arrangement. There's no walls, there's no guard dogs, there's no towers or prison guards or anything like that.
तो देख सकते हैं इस दुनिया में कोई सड़कों पे जो है कोई पहरा नहीं है हमारे ऊपर, कोई इस तरीके से जो है हमारे ऊपर जो है निगरानी नहीं रखी हुई है, पर कोई नहीं निकलता।
The living entity just wants to stay here.
बस आपको सिर्फ जो है जीव को यहाँ पर रहना है बस।
It's such a perfect arrangement that Maya Devi has made that no one wants to leave.
क्योंकि माया देवी ने ऐसा बढ़िया बंदोबस्त करके रखा है कि कोई खुद यहाँ से भागना नहीं चाहता।
They're thinking this is such a wonderful place. It's so comfortable. I got everything I need here.
तो हर किसी को ये लगता है कि देखिए कितनी खूबसूरत दुनिया है, जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, तो मैं यहाँ से इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता।
You know, look at my wife. She's so beautiful. My husband is so handsome. He's so strong.
तो मेरी जो मेरी पत्नी जो कितनी खूबसूरत है, मेरा जो पति है वो कितना सुशील है, कितना शक्ति बलवान है।
Look at my beautiful children.
मेरे बच्चे कितने खूबसूरत हैं।
My job, my car, my house.
मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, मेरा घर।
My friends.
मेरे दोस्त।
There's a really nice section in I think it's chapter 31 in the third canto.
तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में एक प्रसंग आता है।
And this section is describing the movements of the living entity in the material world.
तो जो इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की क्रियाकलापों के बारे में बता रहे हैं।
And I can't remember the verse, but it's talking about how the living entity in this material world, he never finds aversion to any situation he finds himself in.
तो जहाँ उस एक श्लोक है वहाँ पर जहाँ पर भगवान ने बता रहे हैं कि इस दुनिया में जीव को कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं मिलती जो उसको ये जो इसको उसके अंदर ये विश्वास जगा दे कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है।
And no matter what species of life the jiva finds himself in, they find a particular type of attraction in that form of life.
क्योंकि वो जीव किसी भी योनि में क्यों ना हो, हर योनि में उसको उस योनि में बरकरार रहने के लिए कोई ना कोई आकर्षण की वस्तु मिल ही जाती है।
Just like here we are, we're situated in this human form of life.
जैसे हम यहाँ पर मनुष्य जीवन में मनुष्य योनि में हैं।
And we're probably thinking it's pretty special.
और हमें जो है इस बात का जो है शायद गलतफहमी भी हो कि ये बहुत ही खास है।
But if you take the perspective of the devatas and they look at our life, what do they think?
But जब देवताओं की नजर से जरा सोचिए, जब देवता हम इंसानों को देखती है तो किस निगाह से देखते
हैं?
क्या है, मैले कुचैले से गंदे लोग हैं।
And it's exactly the same. It's like, you know, you go to Vrindavan, right? You see the hogs lying in the drain. You know, and it's like, my God, that's such a disgusting place.
बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम वृंदावन में जाते हैं और वहां पर जो है हम नाले में जो है सुअर को लेटा हुआ लिथड़ा हुआ देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसे ही।
And, you know, we're thinking this is such a disgusting form of
life. हमें लग रहा है कि ये क्या घटिया गंदा गंदगी है।
I remember one time I was in Vrindavan. And there was a little child was passing stool and the mother's holding its hand.
Okay.
That's not the best part. Wait till you
hear this. I know, but that's very common in India. तो हिंदुस्तान का जो खास नजारा अक्सर देखने को मिलता है सुबह सुबह, प्रभु जी कहते हैं मैं सुबह वृंदावन में गुजर रहा था और एक माँ ने जो है एक बच्चे का हाथ पकड़ कर रखा था, बच्चा बैठ के जो है मल त्याग कर रहा था।
And then a hog came and pushed the child out of the way to eat the stool.
और अचानक कहीं से एक सुअर आ गया, उसने उस बच्चे को जो है टक्कर मार के साइड गिरा दिया।
Even while it's passing still, it pushed it out of the way.
बेचारा बैठ के बल त्याग कर उसको धक्का मार के फेंक दिया।
And I was just thinking of this verse from the Bhagavatam, how, you know, the hog is thinking, wow, fresh stool, ki jai, you know.
और मैं भागवतम का ये श्लोक याद कर रहा था, मुझे याद आ रहा था, क्योंकि सुअर सोच रहा है, वाह वाह, एकदम ताजा ताजा जो है, मुझे मिल गया।
And this is really amazing story that Prabhupada tells about Lord Indra, how he became a hog.
Who?
Lord Indra.
Indra, yeah. और उस वक्त जो है, प्रभुपाद भी जो है, तात्पर्यों में जो एक जगह में बता रहे हैं कि कैसे इंद्र को जो एक बार सुअर बनना पड़ा।
And what happened was, you know, because he had offended his spiritual master, he was cursed to become a hog. And so he came down and he was living as a hog, but no one's there managing it up in the heavenly planet, so things started to go bad.
तो जो आता है कि एक बार बृहस्पति के प्रति अपराध करने की वजह से उनको श्राप मिला था, जिससे इंद्र जो है यहाँ पर आके दुनिया में सुअर बने थे। अब वो तो यहाँ पर सुअर की योनि में थे, तो ऊपर स्वर्ग में जो है इंद्र की पद को गद्दी को संभालने के लिए कोई था नहीं।
And so Lord Brahma came down and asked Indra, please come back.
तो वहाँ पर जो है अस्तव्यस्त हालत हो गई थी, तो इसलिए ब्रह्मा जी नीचे आए, इंद्र को ढूंढा स्वर्ग की योनि में, उसको बोला कि चलो वापस चलो।
Come back to the heavenly planets.
चलो वापस स्वर्ग चलते हैं।
And Indra was thinking, you know, in his hog body, he said, heavenly planets. I mean, what could be better than this?
तो अब क्योंकि इंद्र जो सुअर की योनि में तो सुअर था, तो सुअर कह रहा है कि स्वर्ग में वो आनंद का जो यहाँ पर है, ये देखो।
Look at my beautiful wife. Look at all my children. So many beautiful.
तो ये देखो मेरी जो सुअर नहीं है, उसको देखो, सुअर के बच्चों को देखो।
So the point is, no matter what situation the jiva finds himself, if they're covered by yoga maya or maha maya, they're completely bewildered.
तो इसीलिए जो है कोई बात जी जो किसी भी योनि में क्यों ना हो, जब उसको महामाया उसको जो है आवृत कर देती है, तो फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता।
If they're identifying with the material body, they're thinking that this is me, then they're thinking this is a perfect situation.
तो अगर कोई जो है भौतिक जगत में अपने शरीर को जो है मैं समझ बैठता है, तो उसको लगता है सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक है।
But by the mercy of the spiritual master and by the mercy of the supreme personality of Godhead, we have some small understanding that this is not our position.
तो पर हम अपने आध्यात्मिक गुरु के कृपा से जो है हम जो है इतना समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत समझ हमारे अंदर पैदा हुई है कि ये जहाँ पर हम हैं ये सर्वोत्तम स्थिति नहीं है।
And by very very strictly practicing the process of bhakti, we'll actually reawaken our constitutional understanding, our understanding of our constitutional position.
तो और अगर भक्ति का जो है हम कड़ाई से सिद्धांतों का पालन करें, तो हमारे अंदर जो है ये चेतना जग जाएगी कि हमारी संवैधानिक स्थिति क्या है.
But we have to be very diligent in our practice of bhakti.
तो पर हमें अपने भक्ति में जो है बहुत ही सजग तरीके से उसको हमें उसका आचरण करना है.
If we're negligent in our practice of bhakti, then the disaster will result.
तो अगर भक्ति के चर्या में जो है हम लापरवाही बरतेंगे, तो उसका अंजाम परिणाम बहुत खराब हो सकता है.
Now, use another practical example. These days, when we shave, we have these fancy razor blades with 5 blades and all these different protections, and it's hard to cut yourself with one.
तो जैसे आजकल जब जो हम जो उस तरह इस्तेमाल करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो वो सेफ्टी ब्लेड्स के साथ आता है, तो उससे जो है दाढ़ी बनाते वक्त जो है कटने का खतरा बहुत कम है.
But when I was a child, the barbers used to use cutthroat razors.
और प्रभु जी कहना जब मैं छोटा था तो आपको याद है ना वो पुराना जो उस्तरा होता था तो वो उस्तरा इस्तेमाल होता था जिससे गला भी कट सकता है.
Blade was about this long, and it was open blade.
तो जैसे उसका जो ब्लेड है इतना बड़ा होता था और ब्लेड खुला हुआ है उसके ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है.
And so sharp.
और बहुत ही तेज धार.
They had the strop beside the chair and make it really sharp.
और उसके जो है कुर्सी के हथेली पर जो है वो लगाया होता था ना पत्थर जिस पे जो है उसको घिस के उसको चमका के वो करते थे तेज करते थे धार.
And just one slip, finished.
और अगर एक बार हाथ फिसला तो आप जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे.
So Prabhupada sometimes he would compare the process of bhakti to like a razor's edge.
तो प्रभुपाद जो है शास्त्रों से यही उदाहरण देते हैं कि भक्ति का मार्ग भी जो है कई बार बिल्कुल एक ये इसके उस तरह की धार जैसा है.
One slip and there's blood.
जैसे फिसलेंगे खून.
So and of course you know Srila Prabhupada would be I've just been reading this book about Jamuna.
तो अभी जो यमुना माँ जी के बारे में जो किताब आई है प्रभु जी वो पढ़ रहे हैं उनकी आत्मजीवनी.
And we see that Srila Prabhupada he was very encouraging but also he would push his disciples to improve.
तो प्रभुपाद का जो प्रभुपाद की जो शैली थी कि वो जो है कई बार वो बहुत उत्साह उत्साहवर्धन करते थे अपने भक्तों का मगर साथ ही साथ उनको आगे बढ़ने में जो के लिए जो पीछे धकेलते भी थे.
But whatever service the devotees did, he was always very thankful, very appreciative.
तो जो भी सेवा आपने क्यों ना करी हो प्रभुपाद के लिए प्रभुपाद उसका बहुत सराहना करते थे और हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार होते थे.
But nonetheless, he would always push them to do better, to excel.
But फिर भी उसके साथ साथ प्रभुपाद हमेशा जो है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि वो और बेहतर कर सके.
Because he knew if we were able to practice this higher standard of bhakti, we would achieve love of Godhead.
तो क्योंकि अगर उनको मालूम था कि अगर हम भक्ति के उच्च कोटि की भक्ति हम कर सकेंगे तो हमें निश्चित तौर पर भगवत प्रेम भी प्राप्त होगा.
So in all aspects of our devotional service, we have to be very diligent to ensure we are doing the best that can be possibly done.
तो भक्ति के हर स्तर पर जो है हम ये कोशिश करें कि हम बेहतर से बेहतर जो है अपने साधना को अपने भक्ति की चर्या को आगे बढ़ा सके.
Constantly striving to do better and better.
तो हमेशा जो है ये कोशिश करें कि हम और बेहतर कर सके.
Just like with deity worship.
जैसे कि अर्च विग्रह सेवा ही ले लीजिए.
I figured I could get a plug in.
What?
I figured I could get a plug.
Yeah, you need to.
So, if we look at Radhika Raman, Krishna Balaram, Jagannath Prabhu Subhadra Gaurinathai, very beautifully dressed.
तो जैसे अगर हम यहाँ पे अभी दर्शन कर रहे हैं राधा राधिका रमन जी के कृष्ण बलराम के जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य के गौरनिताई के बहुत ही खूबसूरत उनका श्रृंगार है.
And the flower decoration on the altar.
और जैसे फूलों से जो वो सज्जा की गई है.
Very nice.
बहुत खूबसूरत.
And all glories to the pujaris for their wonderful service.
और सभी पुजारियों का जो है कि जय हो जिन्होंने इस तरीके की सेवा भगवान को प्रदान की है.
Did anyone know what time darshan was today?
किसी ने ध्यान दिया कि दर्शन का वक्त क्या था आज?
Anyone know?
किसी का ध्यान है किस वक्त दर्शन खुले?
Huh?
7:33. 7:33.
What time's darshan supposed to be?
दर्शन कब खुलने चाहिए? किस वक्त खुलने चाहिए?
7:30. So it was late.
तो इसका मतलब देर हुई.
The what are the two most important principles in deity worship?
अर्च विग्रह सेवा के मूलभूत दो सिद्धांत क्या हैं?
Cleanliness and punctuality. Above anything else, Prabhupada would talk about these two things.
तो श्रील प्रभुपाद जो है कोई और चीजें बाद में सबसे पहले इन्हीं दोनों दो सिद्धांतों पे बात करेंगे साफ सफाई और वक्त की पाबंदी.
And he'd make the simplest of points. He said, if we're always very attentive to cleanliness and punctuality, then Krishna will be happy to accept our offerings.
और प्रभुपाद ने अक्सर जो है इसी पे बल दिया बहुत सादा सा सिद्धांत कि अगर आप साफ सफाई और वक्त की पाबंदी पर जो है नजर रखेंगे तो भगवान आपकी सारी सेवा कबूल करेंगे.
I've never read a single place or heard a single reference where Prabhupada said, if you're very expert at the ritual, Krishna will accept your offering.
मैंने अभी तक एक भी श्रील प्रभुपाद का ऐसा कथन कहीं नहीं पढ़ा जहाँ श्रील प्रभुपाद ने कहा हो कि अगर आपका आपका आपके रीति रिवाज बहुत अच्छे होंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न होंगे.
And you know, I may not have read, you know, I'm sure I haven't read everything that Prabhupada said about deity worship, but I've read a lot.
मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैंने श्रील प्रभुपाद के अर्चक वगैरह सेवा के बारे में जो भी प्रभुपाद बोला सब मैंने पढ़ा है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ मैंने काफी पढ़ा है।
And he would constantly emphasize these points again and again and again and again. Every time he spoke about deity worship, he'd talk on these two points.
तो श्रील प्रभुपाद जब भी ये जो दो सिद्धांत हैं साफ सफाई और वक्त की पाबंदी इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बार 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 जो इस पे जोर देते थे।
So what does that tell us?
इससे हमें क्या सबक मिलता है?
That Prabhupada constantly emphasized these two points. What does that tell us?
ये जो दो सिद्धांतों पर श्रील प्रभुपाद बार बार जोर देते थे इससे हमें क्या संदेश मिलता है?
Nothing.
कुछ भी नहीं, सब चुप है।
Just Prabhupada liked to say these things?
बस प्रभुपाद को ये बोलने की आदत पड़ी हुई थी इसलिए।
What does it tell us?
हमें क्या कहती है ये? क्या संदेश है हमारे लिए?
He said that there's a, and it's not just in his lectures and stuff. There's also Bhagavatam purports and Gita purports. There's a purport in the Gita where he talks cleanliness. About this 12th chapter
cleanliness.
Where he talks about the qualities of a devotee, and one of them is cleanliness.
तो बारहवें अध्याय की भागवत गीता का सी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्होंने अलग किसी प्रवचनों में श्रील प्रभुपाद ने अपने चिट्ठियों में अपने किताबों में हर जगह पे यही दो सिद्धांत पे जोर दिया है और भागवत गीता में भी जैसे आप बारहवें अध्याय में जो भगवान जो अलग अलग गुण बताते हैं तो उसके अंदर जो है साफ सफाई के गुण के तहत श्रील प्रभुपाद कहते हैं
एंड इन द परपोर्ट ही सेज विदाउट क्लीनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट
और श्रील प्रभुपाद बिल्कुल बहुत साफ करते हैं साफ सफाई के बगैर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते
Not just that it's helpful or it's nice, he says, not possible. You won't make spiritual advancement.
Srila Prabhupada ye nahi kehte ki saaf safai jo aapko aadhyatmik pragati mein sahayak honge nahi. Prabhupada kehte hain iske bagair ye mumkin nahi hai.
Does that give you some understanding of how important cleanliness is?
To kya iske baad aapko koi iski koi samajh paida hoti hai aapko isme ehsaas hota hai iska ki ye saaf safai kitna zaruri hai.
And there's a really nice letter that Prabhupada wrote to a devotee called Rukmini who was one of the early pujaris in ISKCON.
तो रुक्मिणी माता जी को जो है श्रील प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी है 70 के दशक में
And he said, the idea is summit cleanliness.
जहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका मकसद जो है वो है कि चोटी की सफाई
So, do you know what the summit of the mountain is?
जैसे कि एक 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 एक, एक पहाड़ी की चोटी होती है इसका क्या मतलब है
If you're standing on the summit of the mountain, you can't go any higher.
यानी कि अगर आप किसी पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो आप उससे ऊपर जाना मुमकिन नहीं है
yeah? And he said, the idea is summit cleanliness, that will satisfy Krishna.
Srila Prabhupada कहते हैं कि ये चोटी की सफाई, ये भगवान को संतुष्ट करती है.
Now, I'll tell you a story that Jamuna told me years ago.
Yamuna Mataji ने जो है प्रभु जी को व्यक्तिगत तौर पर जो है एक किस्सा सुनाया था.
Just to give you an idea of what Prabhupada meant by cleanliness.
Prabhupada, साफ सफाई से प्रभुपाद की क्या मुराद थी?
Prabhupada was staying in his rooms in Radha Damodar.
Prabhupada Radha Damodar ke kamron mein us waqt reh rahe the.
This is before the Vrindavan temple was built.
Tab Krishna Balaram mandir ka nirman nahi hua tha Vrindavan mein.
And Jamuna would clean his rooms every day.
Aur Yamuna Maa ji roz Prabhupada ke kamre ki safai karti thi.
And you know Jamuna was a very clean person.
Yamuna Maa ji khud bahut saaf safai pasand thi.
Very organized and she had this incredible burning desire to just please Prabhupada.
Aur Srila Prabhupada ko प्रसन्न करने की उनके अंदर बहुत तीव्र धड़कती इच्छा थी
and so she cleaned everything very nicely and she put everything back in its place and you know she was very satisfied
तो सब पूरा कमरा साफ करना सारी चीजों को निकाल के साफ करके वापस उन्हीं जगह पर रखना जहां से थी और वो बहुत संतुष्ट थी
and then Prabhupada came and he sat down at his desk and he was doing some things
और श्रील प्रभुपाद उसके बाद वापस कमरे में आए तो वो अपने मेज पर जो है अपने टेबल पर रख के जो है वो कुछ काम करने लगे
and then after a little time he said Jamuna When will you ever learn?
और श्रील प्रभुपाद ने थोड़ी देर बाद यमुना माँ जी की तरफ देख के बोला तुम कब सीखोगे?
When will you ever learn?
तब कब सीखोगे?
She said, "What do you mean, Srila Prabhupada?"
और श्रील प्रभुपाद उनको समझ नहीं आया कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं?
He said, "When will you ever learn how to clean?"
प्रभुपाद ने कहा कि तुम सफाई करना कब सीखोगे?
And she's completely bewildered.
अब वो बिल्कुल ही भौचक्की रह गई.
Because she thought that everything was spotlessly clean. And then Srila Prabhupada, he picked the stapler up off the desk and he opened the stapler and he wiped his finger and said, see, dust.
तो प्रभुपाद ने जो ऊपर से जो टेबल के ऊपर स्टेपलर लगा हुआ था वो खोला उसके अंदर गंदगी थी देख रहे हो गंदगी देखा है
So if there's one spot of dust, it's not clean.
अगर वहां पर एक भी धूल का कण है तो वो जगह साफ नहीं है
And again in a Bhagavatam purport, I can't remember where it is. I can't remember which canto it is. But Prabhupada makes the point that if we're actually very attentive to cleanliness, then one day we'll see the Supreme Personality of Godhead face to face.
तो श्री प्रभुपाद जय भागवतम के एक स्कंद में इस स्कंद के तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से सब कुछ साफ रखना सीखेंगे बिल्कुल चमकता हुआ तो एक दिन जैसे ये चमकता हुआ जो जगह है उसी तरीके से आपको कृष्ण भी जो है उनकी उनका भी चेहरा आपके सामने ऐसे ही आएगा इसी तरीके से आप आमने सामने होंगे कृष्ण के
It's so important. You really need to understand this deeply. In spiritual life, cleanliness is so important. Prabhupada, he told the devotees the temple room should be shiny like a new pin.
श्रील प्रभुपाद मंदिर के लिए कम से कम मंदिर के कक्ष के लिए कहते थे ये ऐसा चमकता होना चाहिए जैसे कि कोई नया ऑलपिन जब मार्केट में आता है
I'll let you be the judge of that.
और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप खुद जो है आप अंदाजा लगाएं
Wherever I go, the main point I talk about in deity worship is cleanliness because not very many devotees get it.
तो मैं जहां भी जाता हूं ज्यादातर जगहों पर मैं इसी बारे में मैं बात करता हूं जहां तक अर्चा विग्रह सेवा की बात है साफ सफाई क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ये बात उनके जहन में पल्ले पड़ती नहीं है
And honestly speaking, there's only a few temples in ISKCON which I'd actually say were clean.
और मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं ISKCON में कुछ ही गिनती उंगलियों में गिनने वाले कुछ मंदिर हैं जो साफ सफाई बरतते हैं
If you ever have the chance to go to Hungary, go to the Budapest temple, it's clean.
अगर आप कभी जो है यूरोप में हंगरी जा सकें वहां बुदापेस्ट में जो मंदिर है वहां पर जाइए वो आपको साफ दिखेगा
very, very nice example.
ये बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा मंदिर वो बहुत अच्छा उदाहरण है
But even I found some dirt there.
फिर भी मैं वहां पर भी मैंने निकाल लिया था कुछ
the main point is that Srila Prabhupada emphasized that if you want to make advancement in spiritual life be clean
इसका मुद्दे की बात जो वो ये है कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इसी बात पे बार बार जोर देते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको साफ सफाई बरतनी पड़ेगी हमेशा
Both internally and externally.
अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी
Because if we become externally clean, this will facilitate us becoming internally clean, and if we're internally clean, this will manifest externally.
अगर आप बाहरी साफ सफाई बरतते हैं तो ये आपको अंदरूनी तौर पर साफ सफाई बरतने में मददगार साबित होगी और अगर आप अंदर से वाकई में साफ हैं तो वो बाहर झलक के आएगी और बाहर अपने आप सफाई बरती जाएगी
And that's why this word here, Vishuddham, is very significant because Vasudev and Devaki were completely pure.
तो ये पिछला जो श्लोक है 28वें श्लोक में विशुद्ध जो शब्द आता है वो इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो वसुदेव और देवकी माफ कीजिए ये बहुत ही शुद्ध थे
Therefore, they understood the absolute truth.
इसी वजह से वो परम सत्य को जान सके.
But Kamsa, because of his material contamination, could not possibly understand the absolute truth.
कंस क्यों नहीं जान सका? वो इसलिए नहीं जान सका क्योंकि वो साफ नहीं था.
So here we are. We're practicing Krishna consciousness. What's our goal? Is to understand Krishna, become a devotee of Krishna. But if we're not pure, we'll never get there.
तो ये कृष्ण भावना में जो है इसका साधना इसका अभ्यास करने का क्या मकसद है यही ना कि हम भगवान को समझ सके भगवान के पास जा सके मगर अगर आप साफ सफाई नहीं बरतते आपको ये समझ नहीं आएगा
So we need to become completely pure.
तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से शुद्ध होने की आवश्यकता है
internally and externally.
अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर किसी के सवाल
Use the microphone so everyone can hear. Please. No, we're online, are we?
Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, can you please elaborate what is the difference between Maya, Yoga Maya and Mahamaya? And if it is potency of Krishna, then why it is not let us to go to Krishna? Thank you.
Yeah, the difference between Yogamaya and Mahamaya is fairly simple. Chayevi yasya bhuvanani vibhati durga mentions in the Brahma Samhita.
So, Brahma Samhita mein chayevi yasya bhuvanani vibhati durga. So, Prabhuji keh rahe hain ki Yogamaya, Mahamaya, inka beech ka jo fark hai, wo bahut aasan hai samajhna.
Mahamaya is like the shadow of Yogamaya.
महामाया जो है वो योग माया की छाया के जैसे है.
But essentially it's the same energy.
जबकि वो बुनियादी तौर पर वो एक ही शक्ति है.
An example that Prabhupada would give is that just like with electricity, an electrical engineer can take the same energy and use it for heating or cooling.
तो जैसे श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बिजली का, जैसे बिजली के लिए अगर एक इंजीनियर चाहे बिजली का वो इस्तेमाल किसी चीज को ठंडा करने के लिए या उसको गर्म करने के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है.
A simple example is a heat pump. You know what a heat pump is?
जैसे कि हीटर जैसा.
An air conditioner or refrigerator works on the principle of a heat pump.
तो जो हीट पंप, जो उसके अंदर का जो पंप होता है हीट पंप, उसी से जो है एसी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है.
So by condensing a gas and allowing it to expand, it moves heat from one place to another.
तो वो जो है वो उसके अंदर की जो गैस होती है वो एक जगह से दूसरे जब स्थानांतरित होती है तो उससे वो काम करती है.
So expert electrical engineers now they've made air conditioners that can both heat and cool.
तो ऐसे एयर कंडीशन हैं जो इंजीनियरों ने बनाया है जिससे वो उसको ठंडा भी कर सकती है, उसी से उसको गर्म भी कर सकते हैं.
So by the manipulation of electrical energy, they can either heat or cool. So in the same way, Krishna's energy either functions as yoga maya or maha maya, same energy.
तो जैसे कि बिजली से जो है आप किसी चीज को ठंडा या गर्म कर सकते हैं, उसी तरीके से भगवान की वो एक ही शक्ति है जो महा माया या योग माया दोनों के रूप में काम करती है.
Primarily the function of yoga maya is to facilitate the pastimes of Krishna.
तो योग माया का जो मुख्य कर्तव्य है वो भगवान की लीलाओं का वर्धन करना है.
And that even includes things like if we look at the pastime of when Brahma stole the calves and the cowherd boys.
तो जैसे अभी ब्रह्मा जी जो है आगे आएगा जब वो भगवान के जो है सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लेते हैं, गायों को चुरा लेते हैं.
This pastime occurred on Balaram's birthday.
तो ये बलराम पूर्णिमा में पे जो है वो लीला हुई थी.
So he didn't know that this had happened.
और बलराम जी को ये बात नहीं मालूम थी कि ब्रह्मा जी ने जो ये लीला की.
And for one whole year, Krishna had expanded himself as the calves and all the cowherd boys.
और पूरे एक साल तक भगवान ने जो है अपना विस्तार किया, जितने भी गाय थे, जितने भी बछड़े थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, सबका.
But Balaram, he was noticing, he's saying, you know, all the residents of Vrindavan are becoming more and more affectionate to their children. They're becoming affectionate like they are to Krishna.
और बलराम जी देख भी रहे थे पूरे साल में कि ये जो वृंदावन वासी हैं उनके अपने बच्चों के प्रति जो है उतनी ही उनका प्रगाढ़ प्रेम होता जा रहा है जैसे कि कृष्ण के लिए था.
And even the cows and the bulls are becoming so affectionate to their calves. It's like the affection they have for Krishna.
और वो ये भी देख रहे थे कि जो बछड़े हैं, जो गायें हैं, वो अपने बछड़ों के लिए उतना ही उनके अंदर जो प्रेम उमड़ रहा है जो कृष्ण के लिए आता है.
So then after one year, the cowherd men, they were on top of Govardhan Hill with the bulls and the cows, and they saw their calves down the bottom of the hill, and they saw their children down the bottom of the hill, and they all ran down the bottom of the hill, and they're just embracing and licking and smelling, and just, you know, they're very, very overwhelmed with affection. And then Balaram is saying, what's going on here? This is like the feelings they have for Krishna.
तो बलराम जी ने देखा एक साल बाद कि गोवर्धन के ऊपर चोटी पर जो है ग्वाले अपने गायों के साथ थे और नीचे जो है बछड़े थे और उनके जो और जो ग्वाल बाल थे वो नीचे थे. तो उन्होंने देखा कि वो जो गायें जब उन्होंने अपने बछड़ों को देखा तो वो गोवर्धन से ऊपर से दौड़ते हुए नीचे तक आई और जिस तरीके से दौड़ते हुए आई उसके बाद जो उन्होंने जो है अपने बछड़ों को जो है प्यार किया, उनको चाटा. तो वो बलराम जी सोच रहे थे तो इतनी ही शिद्दत के साथ जो है मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता हूँ तो ये कैसे मुमकिन है उनके लिए.
So then Balaram asked him, what's going on here?
अब बलराम जी सोच रहे हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ फिर.
And then he come to understand what had happened.
और फिर उनको ये समझ आया एक साल बाद कि ये दरअसल कौन है.
So yoga maya potency is so powerful that even Balaram didn't know what had happened, and he's the supreme personality of Godhead.
तो वो इतनी शक्तिशाली है योग माया कि वो एक साल तक बलराम जी को भी जो है उन्होंने जो अंधेरे में रख लिया जो कि स्वयं भगवान है.
And we see that even through the yoga maya potency, that Krishna is able to perform pastimes with his devotees, such as when Mother Yasoda, you know, we're in Damodar Leela right now, we see here, Yasoda Mai is tying up Krishna, and he's fearful. He's not pretending, it's real.
तो जैसे योग माया से ही जो है ये चीज संभव है, जैसे जो अब हमारा ये दामोदर का महीना चल रहा है और ये दामोदर लीला जो है जहाँ पर यशोदा ने जो है उन्होंने भगवान को बांध दिया, तो ये जो भगवान डरे हुए हैं, डरने का नाटक नहीं कर रहे, वाकई में डरे हुए हैं.
So this is yoga maya potency acting.
तो ये योग माया का कमाल है.
But yoga maya is not stronger than Krishna. Krishna's agreeing to this situation.
हालांकि इससे आप ये नतीजा ना निकाल लें कि योग माया भगवान से ज्यादा बलशाली है. भगवान योग माया के काबू में आने को तैयार होते हैं.
Because the primary, one of the primary reasons Krishna performs his pastimes in this material world is to tighten the affection the devotees have for him, to churn that loving affection.
क्योंकि इस दुनिया में जो भगवान जो लीला करते हैं उसका एक मकसद ये होता है, बड़ा मकसद ये होता है कि भगवान जो जो भक्त हैं यहाँ पर वो भगवान से जो है बहुत कड़े तरीके से आसक्त हो जाएं.
But if Yashoda Mai was thinking that Krishna was God, do you think she'd be tying him up?
आप कुछ सोचिए कि अगर यशोदा को ये मालूम हो कि ये भगवान है, ये कृष्ण है नहीं है, ये भगवान है, आपका क्या ख्याल है, वो मानेंगे इनको?
And then Mahamaya, she makes similar arrangements for the jiva, but rather than, you know, deluding them to engage in pastimes with Krishna, she deludes them to engage in pastimes of material nature.
तो अब यही काम जो है, बहु यही काम जो है माया का है, महामाया का. महामाया का ये काम है कि जैसे वो भगवान योग माया भगवान को जो है मोहित करती हैं ताकि वो लीलाओं में जो है वो लीला विलास करें, उसी तरीके से महामाया जो है जीव को भी मोहित करके रखती है कि वो भौतिक कार्यक्रम में लगा रहे.
Same energy, similar function.
वही शक्ति है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह के कार्यकलाप है.
One bring one to Krishna, one keeps one away from Krishna.
एक कृष्ण के समीप लाती है, दूसरों को कृष्ण से दूर रखती है.
In order to answer the main point, I feel the main point of your question is how to overcome that. I just told you, be clean.
तो और आपका जो सवाल था उसका जो मुख्य विषय था कि कैसे इससे हम पार पा सकते हैं, प्रभु जी ने कहा उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, अपने आप को साफ सुथरा रखें.
For some reason we think that this cleanliness is something secondary. It's not important.
किसी चाहे कोई भी वजह है, हमारे जहन में बात बैठी हुई है, ये दरअसल साफ सफाई इतनी जरूरी नहीं है.
But it's one of the core elements of progressing in bhakti.
पर ये भक्ति में आगे बढ़ने का एक बुनियादी जो है एक वस्तु है.
As I was saying, you know, quoting from the 12th chapter of the Gita, Prabhupada says, without cleanliness, it's not possible to make advancement in spiritual life.
जैसे मैंने पहले ही जो है 12वें अध्याय का हवाला दिया भगवत गीता से, जहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि साफ सफाई बरते बगैर ये मुमकिन नहीं है कि आप भक्ति में आगे बढ़े.
You're just wasting your time.
सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं.
Be clean.
साफ रहिए.
You know, both internally and externally, be clean.
अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी.
And if you can't be clean externally, it's not going to happen internally.
और ये याद रखिएगा कि अगर आप बाहरी तौर से साफ सफाई नहीं बरत सकते, ये अंदर साफ नहीं होने वाला.
Your body should be clean.
आपका शरीर जो है वो साफ होना चाहिए.
Generally, a Brahmin will bathe 3 times a day before they chant Gayatri.
3 times a day, okay, chant Gayatri. तो ब्राह्मण जो है, शास्त्रों में विधान है कि दिन में 3 बार वो नहाता है, गायत्री करने से पहले नहाता है.
Wash your clothes every day.
रोज अपने कपड़े धोएं.
I mean, sometimes I go visiting devotees' houses, stay in the house, and they've got a laundry basket.
Yes.
In the laundry.
मैं कई बार जो है भक्तों के घर जाता हूँ और मैं देखता हूँ उनके घर में जो है वो मतलब गंदे कपड़े रखने का जो है एक टोकरा रखा हुआ है.
And like they wash their clothes once a week.
और वो हफ्ते में एक दिन कपड़े धोते हैं.
Very smelly.
बदबूदार.
Very unclean.
बहुत ही गंदा मैला कुछ है.
Or like sometimes, you know, in Mayapur, you know, devotees, they come to the school and they ask me, where's the toilet?
और कई बार जो है, okay, now I know where you're getting at. तो प्रभु जी जो है, कई बार जो है हमारे मायापुर में जहाँ पर हमारा एकेडमी है, तो वहाँ कई बार पूछते हैं आगे कि प्रभु जी बाथरूम कहाँ है नीचे?
And I say, just go down one floor and follow your nose.
प्रभु जी कहते हैं कि सिर्फ बस एक माला नीचे जाइए, उसके बाद जहाँ आपकी नाक आपको ले जाए उस तरफ चले जाइए.
We're supposed to be Vaishnavs. Is this a Vaishnav, you know, environment?
See, Vaishnav banne aaye hain, ye kya, ye Vaishnav ka mahol hai?
No, our environment should be spotlessly clean.
To jo aapka mahol hai, jo aapka vatavaran hai, wo saaf hona chahiye bilkul.
If you want to see a spotlessly clean environment, you come to where I live in Australia, my house. My wife is so brahminical.
अगर आप साफ सफाई का नमूना देखना चाहते हैं, प्रभु जी ये दावा कर रहे हैं, आप मेरे घर आइए, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी जो भार्या हैं वो उनको बहुत साफ सफाई पसंद है.
And every Monday she cleans the house and she said, didn't you notice I cleaned today? Didn't you notice I cleaned today?
Okay. तो हर दिन जो है साफ सफाई करते हैं और I missed the first part. I'm sorry.
My wife cleans the house every Monday.
Yeah.
And
every Monday.
Every Monday.
Okay.
And when I come home, she says, "Didn't you notice I cleaned today?"
तो प्रभु जी कह रहे कि मेरी पत्नी जो है वो हर सोमवार को घर साफ करती है और जब मैं पहुंचता हूँ कहती है कि तुमने देखा मैंने साफ करके रखा है कि तुम्हें नजर आया?
No, because it's always spotlessly clean.
नहीं क्योंकि वो हमेशा साफ रहता है तो मुझे कभी ऐसा लगा तो मुझे गंदगी पकड़ में कोई किसी ने ऐसा नहीं लगा कि आज साफ नहीं है.
That's the type of environment we need to live in.
इस तरीके के माहौल में रहने की जरूरत है. ये आध्यात्मिक स्तर है.
That's conducive to spiritual life.
ये भक्ति के लिए जो है अनुकूल है.
And even in our immediate vicinity we should keep clean.
और जहां हम रहते हैं उस जगह को भी साफ करके रखना जरूरी है. हमारे आसपास का माहौल भी.
All the deity paraphernalia needs to be spotlessly clean.
कम से कम भगवान के जो बर्तन है वो चमकते हुए साफ होने चाहिए.
In the temple, you know, all these ledges up here, spotlessly clean. The chandelier, spotlessly clean. The fan, spotlessly clean.
तो जो मंदिर के जो पंखे हैं जो ये झारर लगे हुए हैं तो ये जो लाइटें लगी हुई हैं सब साफ होने चाहिए.
Who's read the pastimes of the extraordinary devotional service of Raghunath Das Raghava Pandit?
तो चैतन्य चैतामृत में जो राघव पंडित के सेवा के बारे में जो है विवरण आता है आप में से किस किसने पढ़ा है?
Who's read that?
किस किसने पढ़ा है?
Not many.
ज्यादा लोगों ने नहीं है.
I encourage you to read that. Very, very nice.
मैं आप लोगों को जो है प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोग निकालें अध्याय और पढ़ें.
Raghava Pandit was so concerned about cleanliness, like when the pujari had bought, or actually the servant had bought some coconuts. For the deity, and he touched the door frame as he's walking through, and he rejected them.
वो इतना राघव पंडित को साफ सफाई इतना वो ध्यान रखते थे इतनी बारीकी का ध्यान उनको रहता था जैसे उस लीला के अंदर आता है कि कुछ जो है वो लोग जो है वो नारियल काट के जो वो लेके आए भगवान को अर्पित करने के लिए मगर जिस हाथ से नारियल छुआ था उन्होंने पहले दरवाजे का जो वो है चौखट जो है चौखट छुई थी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये नारियल इस्तेमाल नहीं होगा भगवान के.
And Raghava Pandit was concerned that because he touched the door that some dust may have fallen on the coconut and therefore it's
rejected. तो उससे क्योंकि वो उसमें हो सकता है कि कुछ उसमें धूल हो और वो उसमें क्या नाम है नारियल में लग गया हो तो नहीं ये साफ नहीं है.
And in one of the purports there, Srila Prabhupada he makes the comment, he says that Raghava Pandit was not some crazy fellow with a cleansing phobia.
Yes. तो वहां पर वो बहुत जरूरी जो वो तात्पर्य का वो हिस्सा है जहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये राघव पंडित जो है वो उनको साफ सफाई की सनक नहीं थी.
He just wanted to make sure that everything was the best possible quality that it could be for Krishna.
तो वो उनका सिर्फ यही उनका अभिधेय था कि भगवान के लिए जो भी जा रहा है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला हो साफ सफाई हो उसके अंदर हो.
Srila Prabhupada also had this same mood with deity worship that everything should be first class.
प्रभात का जो है यही जो है भाव था हमेशा आर्च विग्रह सेवा को लेके कि हर चीज जो है उम्दा जो है गुणवत्ता की होनी चाहिए.
So if the fans aren't spotlessly clean, the fans blowing, the dust comes off the fan, it falls on the deity's offering and you're offering dust to Krishna to eat.
आपने सब साफ है ऊपर का पंखा साफ नहीं है पंखा घूमता है पंखे से सारा जो है गंध जो है वो आके आपके अर्च विग्रह के जो सामान है उसमें गिरता है सब गंदा हो गया.
I'll stop there because I could just talk about this for days.
मुझे चुप मैं अब बस मैं बंद करना चाहता हूँ मैं बोलता रहूंगा.
But you know you really need to get this point.
तो ये बात अंदर बैठनी जरूरी है.
In every aspect of our life, we have to become pure. And that's why this word here is so important, Vishuddha. Because Vishuddha means without any spot.
So, इसलिए क्योंकि ये जो शब्द है यहाँ पर इस श्लोक में इसलिए जरूरी है विशुद्ध क्योंकि विशुद्ध आपको विशुद्ध यानी कि उसके अंदर कोई भी दाग मौजूद नहीं हो.
This what's that Vishuddha Shapam Vasudeva Shabditam? How, when one becomes this Vishuddha, then you come to the point of Vasudeva. When you get to the point of Vasudeva, Krishna manifests in your heart.
तो विशुद्ध सत्वम विशुद्ध वासुदेव शब्दितम जब आप विशुद्ध में आते हैं शब्द तब जाके वासुदेव वो हृदय में प्रकट होते हैं.
Shuddha means pure, but Vishuddha means extremely pure.
शुद्ध का मतलब साफ हम समझते हैं विशुद्ध का मतलब बहुत ज्यादा साफ.
If you want to do one thing that will make your spiritual life progress rapidly, become pure.
अगर आप कोई एक चीज ऐसा पकड़ लेना चाहते हैं जिससे आप अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तीव्र गति से, साफ सफाई बढ़ती है.
Pure in thought, word and deed.
कर्म से, वाणी से, कार्य से, तीनों से, शरीर से, कर्म से, वाणी से.
That also साफ. Means being externally clean.
और इसका मतलब है कि कम से कम बाहरी सफाई. धन्यवाद.
Should we finish?
You can have questions.
Very much, Jennifer.
Prabhuji, regarding cleanliness, doesn't Prabhupada talk about just the internal cleanliness when he mentions in the chapter 12? Or sometimes when cleanliness comes, this subject matter comes, it is referred more as internal cleanliness, and we think that we are chanting Hare Krishna, so are we not making any advancement? Or let's say if we are too busy in our services, we don't have time to clean externally.
But you know the story of the wedding party? Yeah, where they had the wedding, and then they got in the boat to go back to the home, and the boatman's rowing all night long.
So, Prabhuji ka sawal aap hi dohra
Oh,
you had a question and then you have an answer. So, Prabhuji ne pucha ki ye jab saaf safai ki baat hoti hai to aksar hamare zehen mein baat aati hai, Hare Krishna mahamantra kar rahe hain, saaf nahi ho raha kya isse? Cheto darpan marjanam ho raha hai na, to kya hum aage nahi badh rahe hain? To agar hamare paas itni hum seva mein itne zyada vyast hai, itne masroof hai ki hamare paas waqt nahi hai, kya hum bahari saaf safai badhte to kya ye kaafi nahi hai apne aap mein? To Prabhuji keh rahe hain, aapne wo kahani suni hai jahan par ek barati gaye the shaadi mein. फिर उसके बाद क्या हुआ था, बाराती सारे नाव पे बैठे हुए थे, नाव का जो मल्ला जो है वो पूरे जोर से जो है वो जो है चप्पू चला रहा था, पर नाव जहां की वहीं थी.
They did make some progress, the length of the rope.
तो उस जो जो नाव जो थी वो आगे जरूर बढ़ी थी. कहां तक बढ़ी थी? जहां तक वो रस्सी थी वहां तक तो आगे बढ़ गई थी.
Same as like, in the process of bhakti, we may be chanting, we may be doing so many different activities, but if we're committing offenses to the devotees, how far do you go?
Yes. पलट के प्रभु जी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि आप भक्ति में कई सारे आप कार्य करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अब मान लीजिए भक्ति में उसके साथ साथ आप भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, कितने आगे बढ़ेंगे?
So that's why we need to be attentive to the details of devotion. Not just the form of it, not what it looks like. I dress in devotional clothing, I have kanti mala, I have tilak. That's okay, that's nice, but that's not enough on its own.
तो सिर्फ तो उसकी बारीकियों में पे ध्यान देना, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बाहरी तौर पर कैसा दिखता है. जैसे मान लीजिए कि आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई तिलक लगा रहे, कंठी पहनी है, उसने जो है भक्तों के जैसे वेशभूषा पहनी है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर काफी नहीं है.
And of course chanting Hare Krishna is very effective.
और जाहिरी बात है कि जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत ही असरदार होता है.
But if you're trying to light a fire while pouring on water, it's not going to work.
मगर अगर आप एक तरफ से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ से पानी डाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा असरदार नहीं होगा आपका वो प्रयास.
So because we're neglectful in other areas, the chanting of Hare Krishna is not as effective as it should be.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाकी सारी चीजों पे जो आप बिल्कुल आपने चीजों को नजरअंदाज कर दी हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र जपने का जो असर होना चाहिए वो असर नहीं होगा.
So if we can be strict sadhakas, if we can become humble, if we develop a nice service attitude to the Vaishnavas, and if we become clean and pure, then the chanting of Hare Krishna is going to be very effective.
तो अगर हम बहुत कड़ाई से साधना कर रहे हैं, अगर हम विनम्र हैं, भक्तों के प्रति हमारा आचार व्यवहार बहुत अच्छा है, तो और अगर हम साफ सफाई बरतते हैं, तो फिर हमारे हरे कृष्ण महामंत्र जपने का असर जो है वो ज्यादा होगा.
But as it says, Bahu Jamakari Yari Shavani Kirtanan Tabutana Paya Krishna Paripara. You can chant the Hare Krishna Mahamantra for millions of lifetimes, but if you commit offenses, you're not going to make advancement.
जैसे कि चैतन्य चैतन्यमृत में आता है, बहु जन्म का रजत शबद कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण प्रदे प्रेम धन, कि अगर आप एक क्या आप लाखों करोड़ों जन्म जो है आप हरे कृष्ण महामंत्र करते चले जाएं, इधर से करते चले जाएं, उधर से अपराध करते चले जाएं, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे.
And generally we see that Prabhupada connects internal and external purity.
और हम अक्सर देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद अंदरूनी सफाई और बाहरी सफाई को आपस में जोड़ के देखते हैं.
And usually he'll say by bathing three times daily, you know, or something like that. But when he gets into it, he gives a lot more detail.
तो अक्सर प्रभुपाद जो है सरसरी तौर पर जो है सुनने में ऐसा लगता है प्रभुपाद कहते हैं तीन बार दिन में नहाओ काफी है. मगर जब प्रभुपाद उसकी तफसील में जाते हैं तो फिर वो काफी और जानकारी देते हैं.
Don't think that just because I chant Hare Krishna, I don't have to be clean.
ये दिमाग से ये आप इस जो है बदगुमानी में ना रहें कि आप बस हरे कृष्ण का जप करते हैं साफ सफाई बरतने की जरूरत नहीं है.
So many times we make that mistake.
अक्सर ये गलती हम करते हैं.
No, we have to be externally pure and internally pure, both.
बाहर से और अंदर से दोनों से साफ होने की जरूरत है.
Yes, most of us say.
But in a communal living where a community lives, so is it a collective responsibility or is it like one man? So if you can emphasize on that. I mean, many times it's confusing.
That's what Kunks is doing. Kunks is passing the buck. He's saying, not my fault.
No, I'm not saying as far as practicality of maintaining cleanliness is there. How that should be.
I you want to translate?
तो प्रभुजी पूछ रहे हैं कि पर जहाँ पर हम सामूहिक रूप से जब रहते हैं तो सामूहिक रूप से जिम्मेदारी किसकी एक की है कि पूरे जो पूरे जिस समूह का जिसके साथ हम रह रहे हैं कि एक बंदा साफ रखता है बाकी सारे गंदगी फैलाते हैं तो कैसे करें. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ वो कंस भी पूछ इसी तरीके का कर रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है उसका बीड़ा किसी और के ऊपर डाल दो.
In the 80s, I was a temple commander in a temple in Australia.
तो 80 के दशक में प्रभुजी कह रहे हैं कि मैं टेंपल कमांडर था हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक मंदिर में.
And so what I did was when I took over the service, the ashram was like, oh my god, it's so disgusting.
तो जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी हमारे वहाँ का जो आश्रम था वो बहुत ही मतलब बेहाल बहुत बदहाल था वो.
So I personally went through and I cleaned the whole place. I emptied out all the cupboards of things that have been there for years and just threw them all out.
तो मैंने कहा मैंने व्यक्तिगत रूप से सफाई करी आश्रम की. वो कई सारे जो ऐसे कबाड़ मैंने खोले जिसके अंदर जो कबाड़ भरा हुआ था सालों का.
And then we made a clean, then we made a cleaning roster.
उसके बाद जो हमने साफ सफाई करने का जो है एक शेड्यूल बनाया.
And everyone lived in the ashram participated in the cleaning roster.
जो उस आश्रम में रहेगा वो साफ सफाई में हिस्सा लेगा.
So every day the bathrooms were cleaned.
हर दिन जो है नहाने का जो रूम है वो साफ किया जाता था.
And not just hosed down, but cleaned.
और ऐसे नहीं धोया जाता था साफ किया जाता था.
So the showers were spotless, the toilets were spotless, the basins were spotless.
तो सब जो है नहाने का जगह बेसिन मेज सब साफ किया जाता था.
All the bedrooms were cleaned, all the hallways were cleaned every day.
तो जहाँ सोने का कमरा है वो साफ किया जाता था हॉल साफ किया जाता था.
When I was living in the ashram in London, before they had the new ashram, it was just like one big room. Every morning you got up, there was a bucket there with fresh water in it and a cloth, and you wiped the floor.
तो लंदन में जो है जब मैं रहता था तो वहाँ पर बहुत बड़ा कमरा था जहाँ सारे इकट्ठे वक्त रहते थे. तो सुबह जो है पानी भर के जो है हम सुबह सुबह जो है फर्श साफ करते थे.
You know, so there's individual responsibility to keep your area clean, but there's also collective responsibility.
व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि जहाँ आप रहते हैं उस जगह को साफ करके रखें. सामूहिक जिम्मेदारी है उस समूह का जहाँ पे वो सब लोग मिलकर रहते हैं.
It's everyone's responsibility.
सबकी जिम्मेदारी.
You can't say I'm a Brahmin, I don't do things like that.
आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं नहीं करता ये सब गंदे काम.
When I got Brahmin diction, my Guru Maharaj told me, he said, Brahmin means always cleaning.
तो प्रभुजी कहते हैं जब मुझे गायत्री दीक्षा मिली थी तो मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि ब्राह्मण का मतलब है जो हमेशा साफ सफाई बरते.
So it's very, very important. You know, we have to be clean.
बहुत जरूरी है आपको साफ रहना जरूरी है.
How long should we go for?
Then one last, okay, one question. Done.
Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. you have elaborately explained. But sometimes, as he was explaining, there are more important services, or we give more priority to other services than to cleanliness. Because whatever the reason may be, but it is more prioritized, highlight and preached about other services, but not the cleanliness.
Yeah, yeah. Generally speaking, you translate? Yeah, sorry.
तो अमृतगौर प्रभु का सवाल है कि आपने तो काफी तफसील से जो काफी जोर दे के आपने साफ सफाई पे बात करी, पर कई बार जो है दूसरे सेवाओं को जो है ज्यादा अहमियत दी जाती है या उसका प्रचार भी किया जाता है कि उनकी ये सेवा बहुत जरूरी है, पर साफ सफाई के बारे में अक्सर इतनी बात नहीं होती है.
You look at Srila Prabhupada's example.
आप श्रील प्रभुपाद को उदाहरण ले लीजिए.
What did he achieve?
उन्होंने क्या हासिल किया?
Can any of us come close to achieving what Srila Prabhupada did in 11 years?
11 साल में हमें से कोई है जो प्रभुपाद की बराबरी करके दिखा दे, जो प्रभुपाद ने 11 साल में करके दिखाया?
If I lived 11,000 lifetimes, I couldn't achieve what he achieved.
मुझे कह रहे हैं मैं 11,000 जन्म में लगा दूं, मैं प्रभुपाद ने जो 11 साल में करके दिखाया शायद मैं उसके बराबरी ना कर सकूं.
But did he ever say, I can't be clean because I have to go and do something else?
कहीं प्रभुपाद का जिक्र आता है ऐसे जहां प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं आज मेरे पास सफाई का वक्त नहीं है, मैं साफ सफाई की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा जरूरी कोई और काम है.
He was an acharya. He gave a perfect example of how we can become Krishna conscious.
तो वो प्रभुपाद जो है एक आदर्श आचार्य की भूमिका निभाते हुए उन्होंने ये दिखाया कि हम कैसे कृष्णा भावना भावित बन सकते हैं.
And he was always spotlessly clean.
प्रभुपाद हमेशा साफ रहते थे.
Everything he did was spotlessly clean.
वो करते थे वो साफ हर चीज में साफ सफाई बरती जाती थी.
And he established this whole worldwide society on his own.
और ये पूरी की पूरे ये जो विश्व में व्याप्त ये समाज है इस्कॉन का, ये उन्होंने खुद अकेले उन्होंने स्थापित किया.
Yet he was always spotlessly clean.
फिर वो हमेशा जो है साफ रहते थे, चमकते थे.
When we say that, oh, no time for this, what's that a symptom of?
जब हम ये कहते हैं कि नहीं इस चीज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, वो किस चीज का सूचक है?
Rajagun. We never have time for things. That's Rajagun.
जब हमारे पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है इसका मतलब है वो रजोगुण है.
But if we become like this Vishuddha, there's always time.
पर अगर जब आप ये विशुद्ध किस तरह तल पे आते हैं आपका हर चीज के लिए वक्त निकल आता है.
Rather than becoming ruled by time, we overcome time.
तो फिर आप वक्त जो है समय से जो है समय जो है वो आप आपका दमन नहीं करती है, आप समय को पार या लांग जाते हैं.
The fact that we have this impression that there's never enough time means we're governed by Raja.
कि जब ये 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 बात जिसके जहन में घूमती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास किसी चीज का वक्त नहीं है, या जान लीजिए वो सब रजोगुण के प्रभाव में है, इसलिए दिमाग ऐसा बोलता है.
Yet we see that Srila Prabhupada, he achieved so much, but he never seemed like he was rushed.
और दूसरी तरफ श्री प्रभुपाद को देखिए, इतना कुछ हासिल किया प्रभुपाद ने 11 सालों के अंदर अंदर, मगर हम को प्रभुपाद को कभी नहीं देखते प्रभुपाद जी भगदड़ में है.
He didn't have this sense of feeling controlled by time.
कभी भी ऐसा नहीं लगता कि श्रील प्रभुपाद के ऊपर जो है वक्त का प्रभाव इस तरीके से पड़ा है.
So by focusing on purity, we'll cultivate sattva-gun.
तो शुद्धता की तरफ अगर आप नजर रखें, अगर आप उसका अनुशीलन करें तो आप सत्वगुण हासिल करेंगे.
And then we continue with the cultivation of sattva-gun, so eventually becomes vishuddha.
और हम सत्वगुण का जो है अनुशीलन करते जाएं तो धीरे धीरे हम विशुद्ध की तरफ पहुंच जाएंगे.
And then Krishna will become manifest in our hearts.
तो फिर कृष्ण जो हमारे हृदय में जो है प्रकट होते हैं.
But if we're always running around in the mode of passion, how's Krishna going to become manifest?
तो अगर आप हमेशा जो है रजोगुण में इधर उधर भाग रहे हैं तो आपके फिर भगवान को आपके हृदय में प्रकट होने का वक्त कैसे मिलेगा?
My humble request, I beg you, you know, if you really want to make advancement in spiritual life, become clean.
मुझे जो है निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो साफ सफाई बरतें.
This is one of the most beautiful temple rooms in ISKCON.
ये जो मंदिर का ये कक्ष है ये ISKCON के सबसे खूबसूरत मंदिर कक्षों में से एक है.
And you know, it could be so much nicer if it was spotlessly clean.
और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है अगर ये बिल्कुल चमचमाता हुआ साफ हो.
You want people to walk in and go, wow.
So आप लोग आएं, आप क्या चाहते हैं? यही ना कि लोग अंदर आएं और जो है देख के जो है मतलब हचक के रह जाएं, अचंभित हो जाएं.
I've never seen anything this clean.
मैंने कभी भी इतना साफ कुछ नहीं देखा.
People walk into the, like when a few years ago I used to regularly take senior devotees into the Mayapur Academy just to show them around and see what we're doing. And they'd always walk in there and say, Wow, I feel like I'm not in India.
तो प्रभु जी जो है पहले जो है ऐसे अपने वहाँ पर मायापुर में अकेडमी में छात्रों को जो है लेके जाते थे अलग अलग कमरों दिखाने के लिए और लोग जो है वो बिल्कुल आंखें उनकी चिंधिया जाती थी ये देख रहे थे ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि हम हिंदुस्तान में
It's so clean in here.
इतना साफ है
So that's the impression you want to give, you know, when devotees walk into the, when people, guests, they come to the temple room, they think, wow, it's so clean here.
तो लोग जब आए बाहर से आए मेहमान आए और वो देखे मंदिर को और देखे मंदिर का शो इतना साफ सफाई है यहाँ पर
You know, one of the things that Prabhupada mentions in the Nectar of Devotion is about taking the deity on procession every Saturday.
तो जब भक्ति के चौसठ अंगों में जो है एक आता है प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में जहाँ पर जो है आप अर्च विग्रह को जो है पालकी में लेके जाते भ्रमण के लिए
But really, would you want to take the deity on procession around to through the ashrams and things like that?
तो क्या आप किसी भी शनिवार को जो है अपने अर्च विग्रह को जो है जरा ऊपर अपने आश्रमों में अपने सारे कमरों की सैर कराना चाहेंगे
We should have this, try to develop this consciousness that Krishna sees everything.
ये अंदर जो है ये चेतना जगाने की कोशिश करना जरूरी है कि कृष्णा सब कुछ देखते हैं
He's not just a statue standing on the altar he's directly the supreme person of God he sees everything
तो वो वहां पर खड़े जो है कोई मूर्ति नहीं है वो परम पुरुष भगवान है परम पुरुष भगवान को सब कुछ दिखाई देता है
It's not like when we're lying down in a sleeping bag at night you know we can watch some youtube videos and krishna doesn't know about it
ऐसा नहीं है कि आप रात को जो है अपने स्लीपिंग बैग के अंदर जो है बंद करके बैग को कोई वीडियो यूट्यूब की कोई वीडियो देख रहे हैं और भगवान उसको नहीं देख सकते सब पता है
सो यू नो द मोर वी कैन कल्टीवेट दिस कॉन्शियसनेस इन आवर लाइफ द मोर वी विल बिकम गॉड कॉन्शियस
तो जितना ज्यादा आप जो है ये चेतना अपने अंदर जगाएंगे उतना आप भगवत चेतना के करीब होंगे
सो जस्ट प्लीज बी क्लीन
तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आप साफ सफाई बरतें
श्री प्रभुपाद की
जय
समवेत भक्तवृंद की
जय
जय निताय गो प्रेमानंदी हरि
इस गेस्ट